संस्थपकाचार्य सेवियर ऑफ द होल्ड वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga, Shla Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaivam Narottamam. Devim Sarasvati Vyasam. Tato Jaya Mudirai. नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का अध्याय छठा, इनका शीर्षक है पुतना वध और श्लोक संख्या नंबर 22 और 23। कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों को दोहराइएगा। चक्री अग्रत सहगदा हरी अस्तु पश्चा त्वत्पार्श्वयो धनुआसी मधुहा अजाना च कोनेशु संखा उरुगाय उपरी उपेन्द्र तरक्षया शीतो हलधर पुरुष समंता चक्रे अग्रत सहगदो हरिर अस्तु पश्चा चक्रे अग्रत सहगदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधु हज्जानश्च त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधु अज्ञानस् सच कोनीषु शंख उरुगाय उप्री उपेन्द्र कोनीषु शंख उरुगाय उप्रेय उपेन्द्र तार्क्ष्यक्षितो हलधर पुरुष समन्तत तार्क्ष्यक्षितो हलधर पुरुष समन्त चक्रियग्रत सहगदो हरिरस्तु त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधु हजनस्य च के कोनेषु शंख उरुगाय उपर्य उपेन्द्र तार्क्ष्यक्षितो हलधर पुरुष समन्ता Mataji's? शब्दार्थ इस प्रकार है, चक्री चक्र धारण करने वाला, अग्रता सामने, सहगता गदाधारी, हरि भगवान हरि, अस्तु रहता है, पश्चात पीछे पीठ पर, त्वपार्श्वयो तुम्हारी दोनों बगलों में, धनुआसी धनुष तथा तलवार धारण करने वाला, मधुहा मधु असुर का वध करने वाला, अजाना विष्णु च तथा कोणेषु कोणों में, शंखधारी उरुगाय पूजित, उपरी ऊपर उपेंद्र भगवान उपेंद्र, ताक्षरीय गरुड़, शीतो पृथ्वी पर, हलधर भगवान हलधर, पुरुष परम पुरुष, समंतता सभी दिशाओं में। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्लोक प्रभुपाद जी के द्वारा श्लोक प्रभुपाद की, इसमें अनुवाद 22 और 23 दोनों का है। तो अनुवाद इस प्रकार है, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्रों द्वारा की। अज तुम्हारी पावों की, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारी जंगाओं की, अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की तथा हैग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे, केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे हाथों की, उरुक्रमा तुम्हारे मुंह की तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे। चक्री आगे से, गदाधारी हरि पीछे से तथा धनुर्धर मधुहा एवं तलवारधारी भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। शंखधारी उरुगाय समस्त कोनों से तुम्हारी रक्षा करे। उपेंद्र ऊपर से गरुड़ धरती पर तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। तात्पर्य, खेतीहरों के घरों में जो सभ्यता की आधुनिक विधियों में बड़े चढ़े नहीं थे, स्त्रियां गोबर तथा गौमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की रक्षा करना चाह रहे थे। बड़े से बड़े खतरों से महिती सुरक्षा प्रदान करने की यह एक सरल विधि है तथा व्यावहारिक विधि थी। लोगों को इसे करना चाहिए और इसे करने के लिए जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक सभ्यता का अंग है। होम ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयीं ददापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरुग्नातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वरूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस श्रीमद् भागवतम के ये दसम स्कंद का छठे अध्याय जो कि पुतना वध, पुतना पुत यानी कि शुद्ध, ना यानी कि नहीं, जो शुद्ध नहीं थी, पुतना पूरी तरह विषैली भावनाओं से भगवान के पास आई, मगर भगवान ने उनको पुत, उन्हें शुद्ध कर दिया। तो पुतना के वध के पश्चात भगवान कृष्ण, जो कि पुतना इतने बड़े विशाल शरीर धारण किए, और ऐसे वर्णन आता है कि भगवान ने अपनी इच्छा शक्ति से पुतना को वृंदावन के बाहर, जहाँ पर जो वृंदावन के यहाँ पर एक गार्डन था जो कि कंस का गार्डन था, उस गार्डन में जाकर भगवान कृष्ण ने उन्हें गिरा दिए। अब जब उसके ऊपर जब गिर गए, और यहाँ पर पुतना जब पूरी तरह अपने प्राण को गवा बैठी, और कृष्ण को बचाने के लिए गोपियां दौड़ती हुई भागती हुई उस स्थान पर पहुंची, तो ऐसे
अब दृश्य इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है कि पुतना अचेत अवस्था में अब मृत्यु को प्राप्त कर ली, और यहां पर भगवान श्री कृष्ण पुतना के ऊपर बैठकर खेल रहे। अब भगवान के लिए एक नया प्लेग्राउंड मिल गया। अब यहां पर सारे गोपियां आई, उन्हें लेकर उतारी, और उसके पश्चात भगवान कृष्ण को उन्होंने अनेक अनेक विधियों से उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अनेक अनेक मंत्र का जप किया, तो उसके विषय में वर्णन आता है। तो वही वर्ण उसी मंत्र का यहाँ पर चर्चा हो रहा है कि किस प्रकार पुतना के मृत्यु के पश्चात भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए गोपी अपने भगवान के प्रति वात्सल्य रस को प्रकट करते हुए उन्होंने भगवान की रक्षा के लिए अनेक अनेक मंत्र का जप किए। तो कैसे भगवान के कंठ को बचाने के लिए सूर्य के नाम का जप किया, भगवान के कमर को रक्षा के लिए अच्युत की मंत्र का जप किया। इस प्रकार जो अनेक मंत्र का जो भगवान के नामों के संबोधित करते हुए उन्होंने जप किए। तो यहां पर यह दृश्य दिखाई पड़ रहा है, आज के जो श्लोक में यह वर्णन आता है। तो भगवान के जो मंत्र जो है, भगवान का नाम मंत्र, ये काफी प्रभावशाली है। आप देखिए, केवल जो शब्द ध्वनि इतना प्रभावशाली होता है कि व्यक्ति के मनोविचार को भी बदल सकता है। जैसे बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल है, जिस जंगल में आदिवासी लोग उस बड़े बड़े पेड़ को काटने के लिए उन लोग के पास कोई हथियार नहीं हुआ करता है। तो बड़े बड़े पेड़ को काटने के लिए वो जंगल के जो आदिवासी लोग हैं, ये लोग उसी पेड़ के ऊपर चढ़कर अनेक अनेक प्रकार के उन्हें गालियां देते हैं उस पेड़ को, और इतनी गालियां देते कि वो पेड़ गाली सुन सुनकर हताश होकर जीवन जीने का पूरा निरुत्साहित होकर वो उन्मूलित होकर गिर पड़ता है। ये यहां पर ये दृश्य दिखाई पड़ता है कि कैसे वो आदिवासी वो जंगली लोगों के मुख से जो शब्द ध्वनि की क्या शक्ति है, को वो शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली है कि वो पेड़ को भी उन्मूलित होकर गिरा सकता है। तो अगर आप देखिए कि एक भौतिक शब्द में ऐसी शक्ति है, तो आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक जो शब्द है, जो भगवान का नाम है, जो मंत्र है, उस मंत्र में क्या प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही मंत्र का यहां पर जप किया जा रहा है। हर एक भौतिक शब्दों में और आध्यात्मिक शब्दों में बहुत अंतर है। भौतिक जो शब्द है उस शब्द में और वस्तुओं में अंतर माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक में जो शब्द होता है वही वो व्यक्ति माना जाता है। तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं माना जाता है। श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं, मनोग्राह्य वस्तुना केनापि संकेत शब्द व्यवहार रहतम। एक व्यवहार चलाने के लिए मनोग्राह्य वस्तुना, मन को ग्राह करने के लिए कोई वस्तुओं का नाम दिया जाता है। जैसे इसे टेबल कहा जाए, हम सब लोग मिलकर इस बात पर आ गए और इस बात पर अड़े कि ये टेबल है, तो वो क्या है? वो एक शब्द को लेकर सभी लोग उसे सहमत हैं। क्यों? क्योंकि इससे व्यवहार जो है वो ठीक से चलेगा। लेकिन शब्द में और व्यक्ति में भेद है, या शब्द में और वस्तुओं में अंतर माना जाता है, लेकिन भगवान के इसमें ऐसे नहीं है। तो भौतिक शब्द जो होता है वो हमेशा व्यक्ति को विचलित कर देता है। कभी कभी कोई ऐसे भी शब्द होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, भौतिक में ऐसे ही होता है, जैसे कि महाराष्ट्रियन में जो अंकल को या मामा को जब पुकारते हैं तो बोलते काका, अंकल को बोलते तो काका करके बोलते हैं। अब इसी बात को लेकर आप केरला में जाओ, वहां पर आप जाकर काका बोलो तो आकर आपको एक झापड़ मारेगा। क्यों? क्योंकि काका मतलब कौवा, तो वहां पर ये शब्द नहीं चलेगा। जैसे ओडिशा में बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, अब वही आप इधर आकर बोलो, आप मुंबई में आके बोलो तो वो तो भड़क जाएगा, बोला क्या बोल रहा है। तो ये जो शब्द जो है भौतिक शब्द में और आध्यात्मिक शब्द में भेद माना जाता है। और कभी कभी तो भगवान के नाम जो है वो नाम उनके गुण, उनके कर्म, उनके जन्म और उनके रूप के अनुसार बताया जाता है। ये भगवान के नाम इस प्रकार दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नाम है अच्युत। अच्युत यानी कि जो भगवान अपने स्तर से कभी गिरते नहीं, उसे कहते हैं अच्युत, जो हमेशा अपने स्तर को बनाए रखते हैं। भगवान इस धरातल में आकर अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे, उनके उनके सेवक के रूप में भगवान, अर्जुन अपने भक्त के सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो वैसे भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, लेकिन यहाँ पर एक जीव के, एक अपने भक्त के रथ को हाँकने के लिए आ गया। तो हालांकि ऐसी स्तर पर रहने के बाद भी तत्पर भी वो भगवान ही है, ऐसे नहीं कि अब वो अपने भगवान के स्तर से गिर पड़े। तो भगवान अपने स्तर से कभी नहीं गिरते, भगवान अपने स्तर चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान हमेशा अपने स्तर को बनाए रखते हैं। तो वैसे अच्युत, अब यहां पर वही भगवान कैसे, उनकी अवस्था क्या थी, जैसे बताया जाता है कि महाभारत में जहां पर रणभूमि में इतने कोलाहल चल रहा था, इतना आर्तनाद चारों दिशाओं में फैल रही थी कि जो बैठने वाला जो व्यक्ति जो था उसे अपने सारथी को बोलने के लिए समय नहीं या उन्हें सुनाई नहीं देता था, तो सुनाई ना देने के कारण जो व्यक्ति जो होता था, जो पीछे जो खड़ा है प्रवासी, वो अपने ड्राइवर को अपने पैरों से, अपने पैरों के चाप से उन्हें इशारा देते थे दाएं तरफ या बाएं तरफ। ऐसे अर्जुन कृष्ण के साथ उनका इस प्रकार व्यवहार था, लेकिन तत्पर भी कृष्ण जो कि अच्युत, जो कि कभी नहीं गिरते हैं। तो इस प्रकार भगवान के इस प्रकार अनेक नामों में जो नाम जो उनके गुण के अनुसार होता है, जैसे उनका उनका एक नाम है भक्तवत्सल। भक्तवत्सल यानी कि जो अपने भक्तों के हमेशा उनकी उनके हित के लिए वो हमेशा कार्य करते, भक्तवत्सल। वैसे भगवान का दूसरा गुण है पतित पावन। फिर भगवान के रूप के अनुसार भगवान का नाम होता है, जैसे श्याम सुंदर, मनमोहक, इस प्रकार ये उनके रूप के अनुसार। फिर भगवान के कर्म के अनुसार उनका नाम होता है, जैसे माखन चोर, वस्त्र चोर, रण चोर, ये उनके कर्म के अनुसार। तो वैसे भगवान के इस प्रकार रूप गुण और सुंदरता, या रूप गुण और लीला, कर्म यानी कि लीला यानी कि कर्म, इसके अनुसार रूप गुण कर्म और जन्म के अनुसार उसका नाम पड़ता है। जैसे भगवान का एक नाम है देवकी नंदन, जो देवकी के पुत्र के रूप में है, और वासुदेव जो कि वसुदेव के पुत्र के रूप में है। तो वैसे भगवान के अनेक नाम है जो चार भाग में विभाजित किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर जितने भी नाम है, जो भौतिक नाम, जो एक व्यक्ति का अगर नाम देखेंगे तो उस व्यक्ति से भेद है। और वैसे भी कभी कभी ऐसे भी देखा, दक्षिण भारत में अगर किसी का नाम देखोगे तो एक छोटा नाम नहीं रहता, बहुत बड़ा नाम रहता है। जैसे मेरा जो पहले का जो नाम था सुरेश कुमार कुंजुकुर माधवन पिल्ले, अब कोई व्यक्ति सुनेगा तो बोलेगा एक व्यक्ति है क्या, पूरा परिवार है। तो केवल एक ही नाम है लेकिन कितना लंबा चौड़ा नाम। अब आप चाइना में जाओ, वहां पर हु ये उसका नाम है, बस इतना ही नाम होता। अब गए थे पुणे में, तो पुणे में जो सेमिनार था तो वहां पर चाइना से व्यक्ति भी आया था और उनका नाम क्या था, क्यू, ये उसका नाम था। तो मैंने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्यों क्यों है, तो बोला पता नहीं। तो वो ऐसे छोटे नाम अगर देखा जाए, अगर भौतिक जगत में भी अगर किसी व्यक्ति का नाम को भी अगर तुलना किया जाए तो वो नाम के साथ वो व्यक्ति तालमेल नहीं खाता है। लेकिन भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान के नामों का जप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिससे यह साबित होता है कि वो साक्षात भगवान के संगति को प्राप्त करता है। केवल भगवान के नामों के जप करने मात्र से जो विधि बाकी रह गया पूरा हो जाता है। जहां पर श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में जहां पर वर्णन आता है कि जब बलि महाराज जब सुतल लोक में जब चले गए, तब उसके पश्चात वामन देव ने शुक्राचार्य को पूछा कि तुम्हारे यज्ञ में तो बहुत सारे मंत्रों की टूटी थी, तो इसको तुमने, इस यज्ञ को कैसे तुमने सफलतापूर्वक किया। तो शुक्राचार्य कहते हैं मंत्रतस तंत्रस्तस छिद्रम देश कालार्थ वस्तुना सर्वम करोति निच्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। जितने भी मंत्र थे यज्ञ में, जो भी कुछ मंत्र बोल रहा था मैं, छिद्रम उसमें बहुत सारी टूटियां थी, लेकिन सर्वम करोति निच्छिद्रम समस्त जितने भी टूटियां थी वो सब क्षणि खत्म हो गए। कैसे, तब अनुसंकीर्तनम, तुम्हारे नामों का जप किया तो वो जितने भी यज्ञ में जो भी कुछ टूटियां थी वो सब परिपूर्ण हो गया, वो सारे छिद्र भर गए। तो भगवान के नाम इतना बलशाली है कि वो मंत्र को परिपूर्ण करता है। तो मंत्र को परिपूर्ण करने के लिए भगवान का नाम जब जरूरी है, तब जाकर वो सारी विधि को पूरा कर देता है। यहां तक कि वर्णन आता है कि जब ध्रुव महाराज जब भगवान के प्रसन्न करने के लिए वो जब इस धरातल में थे भगवान, तब उस समय जब ध्रुव महाराज का जब अंतिम समय, यहां से जब जाने का जब समय आया, तब उस समय भगवान के धाम से उन्हें लेने के लिए विमान आया, तो ध्रुव महाराज को एकाएक पता नहीं लगा कि अब मैं करूं क्या, अब कोई बड़ा महान व्यक्ति आएगा तो फिर उस समय करे क्या कुछ पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, तो उस समय बताया जाता है कि ननाम नामानि गृणन मधुधीशा पार्षद प्रधानव इति समहातन अंजलि। तो वर्णन आता है कि उस समय जब वो पार्षद लोग आए तब उस समय ध्रुव महाराज भगवान के नामों का उच्चारण किया। केवल वो भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से जो उस समय वहां पर जो कमी थी वो पूरी हो गई। केवल उन्होंने हाथ जोड़कर केवल हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण किए, केवल भगवान का नाम लेने मात्र से वो वहां पर कमी सलट गई। तो वैसे जो भगवान का नाम इतना बलशाली है कि कोई अगर, ऐसे भी नहीं कि कोई अगर भगवान का नाम ठीक से नहीं लेता है तो उसको बराबर फल नहीं मिलता है। एक व्यक्ति था जो मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगता था, तो उसे कोई भीगी नहीं देता था। वहां पर साधु लोग आते थे, कहते थे भगवान का नाम जप करो, भगवान का, राम का नाम बोलो, राम का। तो इन्होंने बड़ा क्रोधित हो गया, कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा और कह रहा राम का नाम लो। तो इन्होंने शुरू कर दिया घसीटा राम घसीटा राम घसीटा राम। तो इतने में बाकी अन्य साधु लोग आए और कहने लगे क्या बकवास कर रहा है, घसीटा राम बोल रहा, बंद करो ये। तो बोले मैं यही बोलूंगा। अब वहां पर हल्ला हो गया तो एक विद्वान साधु आया, बोला इसमें गलत क्या है, बोल क्या रहा है गलत, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है। बोला कैसे, बोले जिस समय भगवान कृष्ण जब माखन चोरी करते हुए जब पकड़े गए तो गोपी ने उनको बांध कर घसीट के ला रहे थे तो घसीटा राम बन गए, तो गलत क्या है। तो भले ही भगवान का नाम कैसे भी ले, रत्नागर ने भगवान का नाम उल्टा लिया, मरा मरा बोलते बोलते उनका उद्धार हो गया, राम राम बन गया। तो भगवान का नाम किसी भी भाव से ले, किसी भी शब्द, कोई भी उसके शब्द में कोई हेरा फेरी क्यों ना हो, लेकिन उसकी भावना अगर शुद्ध है तब फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में, धीरो वदति विष्णवे मूर्खो वदति वैष्णवे उभयोम तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि कोई धीर व्यक्ति जो होता है, जो बुद्धिमान, जो पढ़ा लिखा है, शास्त्रज्ञ, वो वदति विष्णवे, वो मंत्र बोलेगा भगवान का नाम विष्णवे बोलेगा। लेकिन मूर्खो वदति वैष्णवे, जैसे कृष्णाए रामाए तो सोचा ये भी वैष्णवे। उभयम तो समम पुण्यम, दोनों का पुण्य एक ही है, भावग्राही जनार्दन, केवल भगवान उसकी भावनाओं को देखते हैं कि उसकी भावना किस किधर है करके। तो वैसे भगवान का जो पवित्र नाम, जिसे कोई इस प्रकार केवल भावना शुद्ध रखकर अगर जप करता है तो उसका उसे निश्चित रूप में फल मिलता है। तो यहां पर जितने भी गोपियां थी वो सब भगवान के नामों को जप कर रही है। तो वैसे ही उनकी भावना पवित्र थी। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब दिल्ली में थे तब उस समय उनकी एक शिष्य थी, तो श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य को ईशोपनिषद मंत्र को उच्चारण करने को कहा और कहा कि उन्होंने प्रभुपाद जी को मिलने के लिए कोई गेस्ट आया था। तब तो प्रभुपाद जी ने कहा अपने गेस्ट को, यहाँ पर यह मेरी विदेशी शिष्य है, विदेशी है लेकिन ईशोपनिषद के सारे श्लोक जानती है। अब उन्हें सारा श्लोक नहीं आता था, केवल 5 श्लोक आता था। अब प्रभुपाद ने कह दिया सारा श्लोक आता है। अब ये हड़बड़ा गई, अब करूँ क्या, प्रभुपाद जी का नाम बदनाम हो जाएगा। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा बोलो ईशोपनिषद श्लोक, तो इन्होंने चालू किया, पहला बोला दूसरा बोला और 5 तक आया, प्रभुपाद ने कहा बस। और फिर प्रभुपाद जी ने इस इंडियन व्यक्ति को कहा, ये भारतीय व्यक्ति को कहा, देखा इन्हें ईशोपनिषद के सारे श्लोक आते। तब प्रभुपाद को वो कहने लगा भारतीय व्यक्ति ने, लेकिन हर प्रोनाउंसिएशन वॉज नॉट प्रॉपर। तब प्रभुपाद ने कहा बट हर रिनाउंसिएशन इज परफेक्ट। तो वो कहने लगे कि इनके शब्द जो है वो ठीक से नहीं उच्चारण कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा भले उनके शब्द ठीक से नहीं है लेकिन विरक्ति एकदम ठीक से है। ये थी ये है श्री प्रभुपाद यहाँ पर ये इंगित कर रहे हैं कि कैसे उसकी भावना जो रहती है वो अगर शुद्ध रहेगी तो बाकी सब सारे जो कमी है वो पूरी परिपूर्ण हो जाता है। तो वैसे ही इस मंत्र को अगर कोई सही भावना से अगर जब, इसका अर्थ ये भी नहीं कि उसे भगवान का नाम जप करने के लिए जो उसका जो बोली है उस पर ध्यान ना दे, देंगे तो और अच्छा है ताकि उसका भावना और पवित्र हो जाए। तो इस तरह भगवान के नाम जप करने मात्र से जो भी कुछ कमी है वो परिपूर्ण हो जाता है। तो हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे उस महामंत्र को जप करने के लिए हमारे एक साधक भक्त के जीवन में कैसी कैसी समस्या आती है, अड़चन आती है। जीव गोस्वामी पाद इसके विषय में उल्लेख करते हैं, ऐसे पांच संकष्ट को या पांच समस्याओं को बताया जाता है। जो ये पांच समस्या एक साधक भक्त को मंत्र उच्चारण करने में रुकावट देता है, तो पांच समस्या क्या है तो बताया गया है। पहला कौतुल्य, कौतुल्य यानी कि क्रुकेटनेस या डिप्लोमेसी, हिंदी में कहा जाए जो कि द्वंद्व विचार रखने वाले, जो अंदर कुछ बाहर कुछ वैसी भावना वाले व्यक्ति रहने के कारण वो मंत्र जप कर नहीं पाता या मंत्र जप करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं रहती। जैसे जीव गोस्वामी पाद इसका उदाहरण देते दुर्योधन का। दुर्योधन जो थे वो कृष्ण को बाहरी दृष्टिकोण से आदर सम्मान देते थे, पांडवों को बाहर से आदर देते थे, लेकिन हृदय से हमेशा यही भावना थी कि कैसे मैं इनको इस राज्य से हटा दूं, इनकी यही भावना चलती रहती थी। तो वैसे भावना रहने से व्यक्ति महामंत्र जप करने में उसका अपराध माना जाता है, या वो महामंत्र जप करने में टिक नहीं पाता है महामंत्र में। तो ये पहला कष्ट होता है जो कौतुल्य। अगर कोई सरल विचार वाला होगा तो भले ही व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है तो वो तुरंत ही बहुत ही कम समय पर वो शुद्ध हो जाता है। जैसे अजामिल, अजामिल ने अंतिम समय पर नारायण का नाम उच्चारण किया, जीवन भर के पाप उनके खत्म हो गए, क्योंकि उनके अंदर वो कौतुल्य की भावना नहीं थी और इसीलिए वो पूरी तरह शुद्ध हो गए और उनको वापस मौका दिया गया। जैसे बताया जाता है कि अफ्रीका में नाइजेरिया, यहाँ पर हमारे इस्कॉन का टेंपल है, तो वहाँ पर उस मंदिर में कुछ चोर लोग घुस गए वहाँ पर आक्रमण करने के लिए। अब ये सारे चोर लोग घुस गए, अब वहाँ के सारे निग्रो लोग, अब वो सारे काले व्यक्ति लोग हैं निग्रो, वो लोग सब लोग घुस गए मंदिर के अंदर, डाका डाले और पुजारी को पकड़ा और इतने में उनका दृष्टि गया भगवान की तरफ, तो भगवान की तरफ देखकर उन लोग ने छोड़ दिया सबको। अब क्यों छोड़ा? क्योंकि बॉस ने बोला, ओ ब्लैक मैन हैज अ व्हाइट वाइफ, वेरी गुड। तो बोले ये काले व्यक्ति के पास सब गोरी पत्नी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चारों दिशाओं पर केवल काले लोगों को निंदा किया जा रहा है, यहां पर तो जय जयकार हो रहा है, तो इसलिए लोगों को छोड़ दिया जाए, और उन लोगों को छोड़ दिया। तो केवल भगवान का दर्शन करने मात्र से उनकी मनोभावना जो थी वो बदल गई। तो वैसे जो भगवान के तरफ अगर सरलता पूर्वक आता है तो तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। जैसे हमारे आत्मा सीरियल जो चला रहे हैं, जो कि हरिदास प्रभु ये प्रभुपाद जी के शिष्य, तो हरिदास प्रभु जब शुरुआत में जब मंदिर आने के पहले उनका जो पिछला जो इतिहास था वो पूरी तरह चोरी में बीता हुआ था और उनका हिस्ट्री वही था। तो एक समय जब जेल के अंदर थे तो जेल के अंदर ही वो बैठकर सोच रहे थे कि अब मुझे अगला क्या करना है, अगला कहाँ पर आक्रमण करना है, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य यही था और जेल में आना जाना मतलब उनका मंदिर आना जाना था ये उनका। और वहाँ पर जेल में उन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन देखा और ये बीटीजी मैगजीन में जहाँ पर उन्होंने पन्ना पलट कर देखा तो प्रभुपाद जी का चित्र, तो बोला चित्र तो ठीक है लेकिन इसके हाथ में जो घड़ी है ये भी मजेदार है, बस मेरा अगला टारगेट यही है। और प्रभुपाद जी के घड़ी को चुराने का उन्होंने टारगेट बना लिया और वहां से निकले, सीधे जू मंदिर आए, सीधा गिरिराज महाराज से भेंट किया और कहा कि मुझे जुड़ना है ब्रह्मचारी बनना है, तो बोला ठीक है तो तुम्हें सरवर मुंडा ना बोला चलेगा, और सरवर मुंडा कर बिठा दिया। बोला लेकिन ये स्वामी से मुझे मिलना है, तो बोला आ जाएंगे। तो एक दिन दो दिन बीता और बड़ा व्याकुल था, बोला अभी का अभी मुझे मिलाओ नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो गिरिराज महाराज ने उनको कुछ पैसे दिए, बोले जाओ कलकत्ता में जाके मिल लो। तो इन्होंने कलकत्ता के लिए गाड़ी पकड़ के सीधे कलकत्ता में आए और प्रभुपाद लेक्चर दे रहे, और सीधे आकर वो एकदम फ्रंट में आकर बैठ गए। प्रभुपाद देख रहे, अरे एक को एकदम इस्कॉन पीस यहाँ पर सामने आकर बैठा है। और पूरा प्रवचन खत्म करने के बाद वो बंदा आए प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी ने पूछा तुम कौन से मंदिर से हो? बोले मैं झूस से हूँ, मैं अभी अभी जुड़ा हूँ। तो बोला अच्छा, लेकिन यहाँ कैसे? मैं वास्तविक में आया था आपकी घड़ी चोरी करने। तो प्रभुपाद ने कहा घड़ी चाहिए तो ले लो। तो घड़ी निकाले रहे थे तो नहीं नहीं स्वामी जी, मैं आपका प्रवचन आपका दर्शन सुनकर अब दर्शन करके अब मैं पूरी तरह शुद्ध हो गया, अब मुझे ये सब विचार नहीं है। तो वो जो निर्मलता पूरी तरह उसकी हट जाती है अगर कोई सरलता पूर्वक उनके भक्तों के पास या भगवान के नामों का जप करते हैं। तो ये पहला कौतुल्य, और दूसरा अश्रद्धा। कभी कभी व्यक्ति के मन में ये विचार आने लगता है कि ये नाम में इतनी शक्ति नहीं है। कहते हैं लोग कि एक नाम जप करने से कोटि कोटि अपराध या पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। जैसे नामनाथ, नामनो ही आवत शक्ति पापम निर्हाणम हरे तावत करतुम न सकनोसी पाटकम पाटकी नरा। अगर पूरे जन्म जन्मांतर के एक पाप को एक तराजू में रखो, केवल एक राम दूसरे तराजू में रखो, तत्पर भी जिस तराजू में राम का नाम है वो तराजू हमेशा उसका पल्ला भारी रहेगा। तो ऐसे कभी सुनकर व्यक्ति के मन में ये संशय आ जाता है कि इतना तो नहीं होगा, और ये सबसे बड़ा घातक है। मंत्र जप करने के लिए दूसरी सबसे बड़ी अड़चन पैदा करती है, और वो है अश्रद्धा। जब श्रद्धा पूर्वक जप नहीं करेंगे तब उसका जो परिपक्वता जो है वो उसे प्राप्त नहीं होगी। जैसे बताया जाता है कि जब रामायण में जहां पर वर्णन आता है कि विभीषण जब प्रभु रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए उन्होंने जब उनके पास जाने के लिए जब विचार किए तो उन्होंने अपने सारी सेनाओं को तैयार किया। बोले कहाँ जाना है? समुन्दर के उस पार। बोले अरे कैसे जाएंगे समुन्दर के उस पार? बोले कुछ करना नहीं है, मैं तुम लोगों को एक पत्ता दूंगा, उस पत्ते को पकड़ना और चलना है। हाँ, पत्ता खोलकर मत देखना, ये राजा ने आदेश दिया था विभीषण ने सारे सेनाओं को। सारे सेना बोले ठीक है। अब उन्होंने वटवृक्ष के एक एक पत्ते को फोल्ड करके उनके सबके हाथ में दे दिया। अब उसी पत्ते को लेकर ये सारे सेना चलने लगे। अब जब चलने लगे तो समुन्दर के ऊपर से चलने लग गए। अब जब उस तरफ जब पहुंचे सारे सेना सब हैरान कि ये वटवृक्ष के पत्ते में है क्या इतना जादू कि हम पानी के ऊपर चल रहे हैं। रामचंद्र जी से भेंट करने के बाद जब वापस लौट आने की जब बारी आई तो उसी पत्ते को पकड़ के वापस चले। तो चलते चलते सेनाओं के मन में ये विचार आने लगा कि ये पत्ते में क्या है, जरा देखना चाहिए। तो धीरे धीरे एक व्यक्ति ने खोला और खोल के देखा राम, राम लिखा और चल रहे हम लोग, ऐसे सोचती वो डूब गया। ऐसे करके जितने भी लोग इसे बारी बारी से एक एक पत्ते को खोले और सबके सब डूब गए, केवल विभीषण बच गए। तो कारण क्या था? अश्रद्धा। क्योंकि उनके मन में वो विचार हट गया कि ये भगवान का नाम इतना बलशाली है। एक भक्त बता रहा था कि मुझे भगवान के महामंत्र से ज्यादा श्रद्धा महाप्रसादे गोविंदे में है, क्योंकि महाप्रसादे गोविंदे बोलने मात्र से थाली आ जाता है, प्लेट और प्रसाद भी आ जाता है, तो उसमें ज्यादा शक्ति है। तो वैसे व्यक्ति के चित्त में ऐसी भावना है कि जब तक कुछ स्थूल रूप से कुछ वस्तु प्राप्त नहीं होता है तब तक उसको भगवान के मंत्र पर विश्वास नहीं होता है। मंत्र पर विश्वास तब जाता है जब कुछ स्थूल रूप में उसके सामने हो जाए, कुछ चमत्कार बने। लेकिन वास्तविकता ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो कि हमारी सारी बुराइयों को खत्म कर देता है। श्रील प्रभुपाद जी से जब विदेशी महिला ने पूछा कि स्वामी जी आपके पहले तो यीशु मसीह आए थे, उन्होंने कई प्रकार के चमत्कार किए, अंधे को आंख दे दिया, गूंगे को बोलना सिखा दिया, आपने क्या चमत्कार किया? प्रभुपाद ने कहा मैंने उससे बड़ा चमत्कार किया है। बोला क्या? ये जितने भी ये सन्यासी लोग हैं ये सभी लोग सड़क छाप थे, लेकिन इन लोगों को मैंने सुधार कर यहां तक लाया। तो वो क्या कैसे हुआ? केवल महामंत्र के जप के आधार पर। तो इस मंत्र में ऐसी शक्ति है कि यह सबसे बड़ा चमत्कार दिखाता है, लेकिन व्यक्ति को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से यह है तीसरा। और चौथा है वस्तु अभिनिवेशिता, यानी कि व्यक्ति जप करते हुए एक साधक भक्त के जीवन में ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो मंत्र छोड़कर किसी अन्य वस्तु पर वो निर्भर होने लगता है। जैसे कि ज्योतिष के ऊपर ज्यादा विश्वास करने लगता है कि जन्म कुंडली वगैरह बनाऊंगा, तो कुछ मंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा कम हो जाती है और ज्योतिष पर ज्यादा विश्वास होता है। जैसे व्यक्ति कभी कभी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो न्यूज़पेपर को ज्यादा ध्यान देने लगता है कि अभी समाज में हो क्या रहा है इसका भी चर्चा करना चाहिए, या इंटरनेट के प्रति, जो मंत्र के प्रति जो आश्रय वो छूट जाता है, किसी अन्य वस्तु के प्रति चला जाता है, उसको कहते हैं वस्तु अभिनिवेशिता। और फिर चौथा जो है वो है भक्ति सौतुल्य। भक्ति सौतुल्य यानी कि ऐसी अवस्था में एक साधक भक्त महामंत्र को छोड़कर अन्य वस्तु को ज्यादा महत्व देते, जैसे कि शारीरिक अवस्था को स्वस्थ रखना, शरीर को कैसे स्वस्थ रखूं इसके प्रति उसका भावना और चेतना एकाग्र हो और जप को छोड़ देता है, या जप की भावनाओं को, जो जप करने का जो समय वो छोड़कर वो जाता है योगा या एक्सरसाइज करने। तो ये इससे ये पता लगता है, कभी कभी कुछ लोग जप करने के बहाने एक्सरसाइज करते हैं, ये नहीं कि वो उनका जो वो ऐसे सोचते हैं कि मैं वॉकिंग तो कर रहा हूँ मॉर्निंग, तो चलो जपमाला को लेके घूम लूंगा, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा। तो वो जो भावना जो है यहाँ पर ऐसी भावना है कि वो मंत्र को कम ध्यान दे रहे और बाकी जो एक्सरसाइज या शारीरिक स्वस्थ को बनाने के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह है चौथे प्रकार का रुकावट। और पांचवा जो है भक्ति कृतात्वी मानित्वम, ये अंतिम है। जीव गोस्वामी इसमें बताते हैं कि भक्ति कृतात्वी मानित्वम यानी कि व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। और घमंड क्या? कि मैं बहुत सीनियर हो चुका हूँ, अब मैं बहुत सीनियर हो चुका हूँ तो मुझे ये महामंत्र ये सब लोअर लोगों के लिए, अब मुझे कुछ और मंत्र देखना पड़ेगा। और वो सोचने लगता है कि इतने दिनों से तो जप कर रहा हूँ, कुछ नया कुछ है क्या? तो उनके मन में वो जो अभिमान उमड़ने के कारण वो महामंत्र के प्रति उनकी जो भावना है वो खत्म हो जाती है। लेकिन वास्तविकता में भले ही व्यक्ति कितना भी कृष्ण भावनामृत में बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे निरंतर भगवान का नाम ही जप करना चाहिए। जैसे बताया जाता है भव सागर, हम सब भव सागर में, अब समुन्दर को पार करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ पैर तैरना पड़ता है, शुरू में जो डुबकी लगाए उस समय भी हाथ पैर मारना पड़ता है और अंतिम समय तक हाथ पैर मारना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अब समुन्द्र के बीच में आए तो सोचने लगा कि मैंने बहुत हाथ पैर मार लिया, अब कुछ और तरीका देखता हूँ, तो डूब जाएगा। उसका एक ही काम है और वो क्या है, हाथ पैर मारना। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र को शुरू से बोलना और अंतिम समय तक बोलना जब तक भव सागर पार नहीं होता है। तो वैसे नाम मंत्र को अगर कोई भगवान के इस नाम मंत्र को अगर जप करता है ये पांच अनर्थों से बचकर, तो निश्चित रूप से शीघ्र अति शीघ्र उसे भगवान के उस असीम कृपा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दामोदर मास है तो उनमें से एक छोटा सा एक इतिहास बताऊंगा कि किस प्रकार यशोदा मैया बाल कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही थी। जब गोपाल जब मटकी फोड़ कर जब भाग रहे थे तो यशोदा मैया पीछे भाग रही थी। यशोदा भी ओलुखलाधवमानम परम दृष्टम अत्यंत द्रुतत्व गोप्या, अंततः गत्वा यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। तो वर्णन आता है कि क्यों पकड़े, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यशोदा मैया अनघ थी, अनघ यानी कि निष्पाप, और निष्पाप होने के कारण वो पकड़ ली आराम से। तो वैसे ही कृष्ण लीला में कृष्ण के पीछे और एक जन भागे थे और उनका नाम था काल यवन। अब काल यवन भी कृष्ण के पीछे भागे थे। अब जब काल यवन के इतिहास में देखोगे तो वहां पर ऐसे दृश्य था कि कृष्ण भाग नहीं रहे थे, केवल कृष्ण चल रहे थे और काल यवन भाग रहे थे, और भाग भाग कर हाफ हाफ कर वो थक गए। फिर भी वो जब परेशान होकर वो उन्होंने कहने लगे, अरे रणभूमि में मुझे बुलाकर भाग रहा है चोर, रण चोर। कृष्ण कहने लगे, वाह बहुत सुंदर नाम है, बहुत सारा नाम सुना था लेकिन ऐसा नाम नहीं सुना। अब वो भाग भाग के परेशान थे लेकिन कृष्ण को नहीं पकड़ पाए। तो आचार्य कहते क्यों, क्योंकि काल यवन जो थे वो पूरे पाप से भरे थे। तो जब हम अपने जीवन में जब पाप की गठरी को कम करेंगे तब हम कृष्ण के पीछे फूर्ती से भाग पाएंगे। अब यहां पर यशोदा मैया और काल यवन को आप देखिए, दोनों को मिलाकर देखिए, अब दोनों में से सबसे फूर्तीला कौन था, काल यवन, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी महादेव से। लेकिन क्या फायदा, इतना फूर्तीला होकर भी यशोदा मैया उनसे अच्छी तरह भागकर कृष्ण को पकड़ पाई। वो कैसे, अब ऐसे भी नहीं कि यशोदा मैया ने सोचा कि दीपावली का टाइम आ रहा है तो मुझे कृष्ण को पकड़ने के लिए मुझे भागना होगा तो पहले से जॉगिंग का प्रैक्टिस किए, नहीं, उन्होंने भले बहुत ही आसानी से कृष्ण को पकड़ लिया। और ये कैसे संभव है, क्योंकि वो निष्पाप थी। तो वैसे ही अगर हम अपने जीवन में इस अनर्थों को कम करेंगे उतने अच्छी तरह हमारा माला घूमेगा, बड़े अच्छी तरह से हम भगवान के नाम जप कर पाएंगे। अन्यथा जब बहुत पाप की गठरी रहेगी तो माला उठाना भारी पड़ेगा। इसलिए जैसे हमारे मंदिर में एक भक्त थे लीला गोविंद, तो वो आए और एकाएक मुझे उठा ही लिया एकदम जोर से, और मैं तो घबरा गया कहीं टेरेस से गिर ना जाऊं। तो मैंने उनको कहा, देखो भाई तुम यहाँ पर इतना बल लगा रहे हो, यही बल तुम सुबह सुबह माला उठाने में लगाओ। तो बोला वही नहीं उठता है प्रभु जी। तो वैसे जो सुबह का जो टाइम है और उस समय लेकर माला उठाकर जप करना, ये वास्तविक एक साधक भक्त के लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि अगर वो माला उठाकर जप कर रहा है तो मतलब वो अच्छी तरह से भाग रहा है। अगर माला उठाकर जप नहीं हो रहा है, यानी कि अभी और समय लगेगा उसके पाप के जो वजन को कम करने के लिए, उसे और समय लगेगा। इसलिए व्यक्ति को इस अनर्थों से बचकर कृष्ण को पकड़ने के लिए पूर्ति से भागना चाहिए और केवल मंत्र का जप करके। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, कोई टीका टिप्पणी। यस प्लीज। हाँ द्वेष, कहाँ से सुन? अच्छा आगे कहिए क्या कह रहे हैं। हाँ नहीं, जहाँ तक मेरी समझदारी है आपने कहीं गलत सुना है कि उन्होंने द्वेष पूर्वक अपने बच्चे का नाम नहीं डाला। नारायण से द्वेष था इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम नारायण नहीं डाला। उस समय उनके पास कुछ साधु लोग आए थे अजामिल के पास, और उन्होंने उनके उनका जो अंतिम पुत्र था तो उन्होंने उनके द्वारा नामकरण किया, तो उन्होंने नारायण नाम रखा। और क्योंकि उनका नारायण नाम होने के कारण भक्त लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर उनको दीक्षा मिल गया। अब वो मंत्र के द्वारा दीक्षा मिल गया और दीक्षा मिलकर वो निरंतर अपने पुत्र को वो नारायण नारायण करके, नारायण इधर आओ, नारायण उठो, नारायण खाओ, इस प्रकार वो निरंतर नारायण का नाम उच्चारण करने लगे। जब जिस समय जब यमदूत लोग आए उस समय वो व्याकुल होकर बेसहारा बेचारे के रूप में उन्होंने अपने पुत्र को वियोग से उन्होंने पुकारा, लेकिन पुकारते उन्हें अपने बचपन की भक्ति याद आ गई, और जो कि नामाभास में वो विचार जाता है, क्योंकि उन्होंने निष्अपराध से अपने पुत्र को उच्चारण किया, पुत्र को बुलाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसका नाम नारायण होने के कारण वो नारायण जो कि नाम में और भगवान में अंतर नहीं है, तो उसका रिएक्शन वहां पर मिल गया। ऐसे ही चैतन्य चरितमृत में भी जहाँ पर वर्णन आता है कि जब वो एक मुसलमान था, वो सोच करने के लिए वन में गया, तब उस समय एक सुअर ने उस पर आक्रमण किया। अब ये मुसलमान था तो वो सुअर को तो बड़ा निंदा करने लगा, क्योंकि सुअर ने उसको जब जोर से जब आक्रमण किया तो उनका सर पत्थर पर अपटा, और जो कि अपने प्राण को त्यागने ही वाला था, त्यागते समय ही वो कहने वाला था हराम खोर बोल रहा था, लेकिन वो हराम बोलते प्राण छूट गया और इतने में उसे मुक्ति मिला, क्योंकि उसमें राम नाम आ गया। तो ये भगवान के नामों की शक्ति है, जो अगर सरलता पूर्वक अगर इसे ग्रहण करता है तो तुरंत ही वो शुद्ध हो जाता है। हमारे बगल में एक माता जी थी, वो कहती थी कि आप लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, हम लोग तो, जब मैं घर पे रहा करता था उस समय की बात है, आप लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, हम लोग तो ओम क्लीन नमा बोलते हैं। मतलब क्यों? बोला वो ओम क्लीन नमा बोलने इधर का नस सीधा हो जाता है। तो अब उनको इधर का नस सीधा करना है, अभी तो जीवन सीधा करना है। तो वैसे भावना वाले व्यक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा हो सकता है कि आप लोग समझने में कुछ गलती किए होंगे। ऐसे नहीं है मेरा कहना कि चलने वाले जप करने वाले सब अपराधी है, नहीं ऐसे भावना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग जो बाहर के, मैं अच्छा अब आपका मैं डाउट क्लियर किया, ठीक है। लेकिन ये तो समझ जाइए कि जो जितने भी चलने वाले व्यक्ति भी जो बैठने वाले व्यक्ति से और अच्छी तरह जप कर सकता है, वो भी हो सकता है, उसकी भावनाओं के ऊपर डिपेंड है। अच्छा तो ये जो प्रश्न जो आपका है, ये प्रश्न यहाँ पर प्रभु जी का ये प्रश्न है कि ये जो अनर्थ जो है, ये अनर्थ के द्वारा व्यक्ति अगर जप करेगा तो उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। तो वो जो व्यक्ति ने, जिन्होंने ऐसे समय पर ऐसे विकट स्थिति में केवल एक बार बोल दिया, तो उनका कैसे, वो कैसे तार गए? तो एक होता है नाम का क्षय होना, अपराध का, पाप का क्षय होना, दूसरा होता है पाप करने की प्रवृत्ति को नाश करना। अब अजामिल ने नारायण नाम लिया, लेकिन नारायण नाम लेकर उनके पाप धुल गए, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं गई। पाप करने की प्रवृत्ति को धोने के लिए पांच प्रकार के अनर्थ से बचना होगा, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब यह कि पाप से वो छूट गए, अब पाप करने की प्रवृत्ति छुपी हुई है, यानी कि पेड़ कट गए, बी अंदर दबा हुआ, अब बी को जलाकर भस्म करना, और उसे करने के लिए व्यक्ति को साधना स्वीकार करना होगा। और साधना जो है वो है हरे कृष्ण महामंत्र को नियमित रूप से जप करते रहना। और इसीलिए हम देखते हैं कि अजामिल वहां से फिर हरिद्वार गए, उनका दूसरा सेकंड चांस, दूसरा। अब वहां पर नारायण बोले तो क्यों नहीं गोलोक गए या भगवान के धाम गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति को धोना था, और उसे धोने के लिए वो वहां पर गए, हरिद्वार में जाकर उन्होंने अपने जीवन में साधक साधना भक्ति करकर उन्होंने शुद्ध किया। ठीक, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की,
और ध्यान होना चाहिए, इतना बड़ा वो